بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 5 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب اللہ کی تلوار ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کی تالیف ابو زید شبلی نے کی ہے. یہ کتاب آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت خالد کو نجران کے علاوہ یمن بھی بھیجا گیا تھا تب بھی اس روایت کی کمزوری میں کوئی شبہ نہیں, کیونکہ عقل یہ بات قبول کرنے سے قطعاً قاصر ہے کہ ایک شخص کو ایک ہی وقت میں دو جگہ بھیجا جائے, ایک جگہ کے لوگ اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں اور ان کا ایک وقت اسی کے ساتھ مدینے آئے اور اسی وقت میں وہ شخص دوسری جگہ بھی موجود ہو اور 6 ماہ تک کوئی شخص اس کی باتوں پر کان نہ دھرے. نمبر 2, تاریخ کی کسی کتاب میں ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس سے اس روایت کا صحیح ثابت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خالد بن ولید کفار و منافقین پر اللہ کی سونتی ہوئی برہنہ شمشیر ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد عہد نبوی میں عظیم کارنامے. نمبر 1, خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا. ہجری مہینہ صفر, ہجری سال 8 عیسوی, 629 ملحوظات, فتح مکہ کے 5 دن بعد. نمبر 2, غزوہ موطہ میں کردار. جمادی الاولی 8 ہجری, فتح مکہ کے 5 دن بعد. نمبر 3, فتح مکہ کے مارکے میں. رمضان 8 ہجری, 629 عیسوی, فتح مکہ کے 5 دن بعد. عزہ بت کو توڑا. رمضان 8 ہجری, 629 عیسوی, 5 دن بعد. نمبر 5, بنی جزیمہ میں. شوال 8 ہجری, 629 عیسوی, فتح مکہ کے 5 دن بعد. نمبر 6, یوم حنین میں یلغاریں. ہجری مہینہ شوال 8 ہجری, 629 عیسوی, فتح مکہ کے بعد. نمبر 7, غزوہ طائف میں شمولیت. شوال 8 ہجری, 629 عیسوی, فتح مکہ کے 5 دن بعد. نمبر 8, بنی المستلق کے ساتھ. رجب 9 ہجری, 630 عیسوی, فتح مکہ کے 5 دن بعد. نمبر 9, تبوک میں. رجب 9 ہجری, 630 عیسوی. نمبر 10, ود بت کو توڑا. رجب 9 ہجری, 630 عیسوی, غزوہ تبوک کے شروع سال میں. نمبر 11, دوم الجندل میں. رجب 9 ہجری, 630 عیسوی. نمبر 12, نجران میں یلغار. ربیع الآخر 10 ہجری, 631 عیسوی. نمبر 13, یمن میں یلغار. رمضان 10 ہجری, 631 عیسوی. نوٹ, ہم نے اس جدول انڈیکس کے تیاری کرنے میں تاریخ طبری کو ماخذ بنایا ہے. نمبر 2, تاریخ کی کسی کتاب میں ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس سے اس روایت کا صحیح ہونا ثابت ہو. اس کے برعکس بعض روایتیں ایسی موجود ہیں جن سے بصراحت اس روایت کا بطلان ثابت ہوتا ہے. چنانچہ ابن حشام لکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لشکر دے کر روانہ کیا اور فرمایا, اگر تمہاری علی سے ملاقات ہو جائے تو علی تمہارے امیر ہوں گے. مؤلف السیرت الجلیہ میں بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ساتھ یا تھوڑے دنوں کے وقفے سے روانہ فرمایا تھا. یہ کہیں مذکور نہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک یمن میں مقیم رہے, لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی اور آخر ان کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا گیا, جنہیں خاطر خواہ کامیابی نصیب ہوئی. غرض یہ کہ تبری کی روایت عقل اور تاریخ دنوں کے لحاظ سے قابل قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر کس درجے اعتماد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آبائی اعزاز پر قائم رکھا، بلکہ بیشتر مواقع پر مقدمت الجیش کا سالار بھی مقرر فرمایا۔ خدمت کے کسی موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراموش نہ کیا۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، جب سے میں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اپنے صحابہ سے الگ نہ رکھا۔ دوسرے صحابہ کو خدمت کے جو مواقع دیے گئے، مجھے بھی دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ اسلام کے عظیم الشان فرائض کی بجا آوری میں مصروف رہے، اور کسی موقع پر بھی بزدلی اور کمزوری سے کام نہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سفر اور ہر غزوے میں آپ ان کے ساتھ رہے اور آپ کے خوشنودی کے طالب رہے۔ ان کی بے نظیر خدمات کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر منقطع نہیں ہو گیا، بلکہ بعد میں بھی برابر جاری رہا۔ اللہ کے دین کی نصرت و حمایت اور اعلیٰ کلمت الحق کی خاطر آپ نے جو شاندار کارنامے سر انجام دیے، وہ تاریخ کے دائمی اوراق بن چکے ہیں، انہیں کسی صورت میں بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حصہ سوم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد صدیق میں۔ تمہید۔ قبل اس کے کہ ان جنگوں کا ذکر کیا جائے جو مرتدین کے خلاف حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی، اس حالت کا اجمالی تذکرہ کر دینا مناسب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت عربوں کی تھی۔ جزیرہ عرب کے اکثر باشندے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے، وہ کسی قانون اور نظام کے تحت رہنے کے عادی نہ تھے۔ تہذیب و تمدن، شہریت اور معاشرتی زندگی کے مبادیات تک سے ناواقف تھے، گو انہیں اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا تھا، لیکن وہ طبعی طور پر اپنے قدیم طرز زندگی اور رسم و رواج پر ہی عمل پیرا رہنا چاہتے تھے۔ اسلام نے ان پر بعض پابندیاں لگاتی تھیں جو انہیں بہت شاق گزرتی تھیں۔ جو قوانین اسلام نے پیش کیے تھے، وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی طبع کے مطابق نہیں تھے۔ مثلا بطور خود قصاص یا انتقام لینے کی ممانعت۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت کی کمی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے اکثر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب نہیں ہوئی تھی، اگر ہوئی بھی تھی تو بہت تھوڑی مدت کے لیے۔ چنانچہ ان کے دلوں میں پاکیزگی اور طبع میں تبدیلی پیدا نہ ہو سکی۔ اسلام کو پوری طرح نہ سمجھنے اور ان پر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے مشرکان عقائد سے انہیں کلی طور پر نجات حاصل نہ ہو سکی۔ ان کے دل اسلام کی محبت سے خالی تھے، وہ بامر مجبوری اپنے سرداروں کے زور دینے پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ دین سے بے خبری کے باعث انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ زکوٰۃ ایک طرح کا تاوان ہے جو ان پر عائد کیا گیا ہے۔ انہیں یہ پتا نہ تھا کہ زکوٰۃ تاوان نہیں بلکہ صدقہ ہے، جو امیروں سے لے کر انہی کے حاجت مند بھائیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، تاکہ دونوں طبقوں کے درمیان تعاون کی راہ ہموار ہو سکے اور معاشرے میں توازن برقرار رہے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی، تو اس وقت کو اسلام سے چھٹکارا پانے اور ان تکالیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پیش آ رہی تھی، انہوں نے اپنے لیے نہایت موزوں خیال کیا۔ چنانچہ ان میں سے بعض نے زکات دینے سے انکار کر دیا، اور بعض نے سرے سے اسلام کو چھوڑ کر اس امید میں جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کی پیروی اختیار کر لی کہ اس طرح وہ بھی قریش کے مقابلے میں اپنے نبی کو پیش کر سکیں گے۔ وہ خلافت کو بغاوت کی کھلی کھلی دھمکیاں دینے لگے اور خلیفہ کے احکامات کو ماننے سے قطعی انکار کر دیا۔ اس طرح جزیرہ عرب میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا، نفاق کا ستارہ اپنے عروج پر پہنچ گیا، یہود و نصارہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور کثرت اعداء کے باعث مسلمانوں کی حالت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں بکریوں کے اس ریوڑ کی سی تھی جو بے حد و کنار सहरा में सरमा की सर्द रात को बगैर चरवाहे के रह जाए, उस वक्त इर्तदाद और इल्हाद की कसरत, दीनुल्लाह और सिरात मुस्तकीम से खुले बंदों इन्हिराफ और शदीद हैजान और इस्तराब की वजह से जजीरा अरब एक आतिश फिशां पहाड़ की सूरत इख्तियार कर गया था। इस फितने से सिवाय मक्का और मदीना और ताइफ के बाशिंदों और चंद बदवी कबाइल के अरब का और कोई कबीला महफूज न था। सारे के सारे कबाइल इस तूफान में बह गए थे। इस नाजुक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पैदा हो गई थी, एक पुरअज़्म निडर और कामिल ईमान वाले शख्स की जरूरत थी, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर पूरा पूरा भरोसा होता और जो अपने बेनजीर अज़्म तदब्बुर और लासानी हिम्मत और फरासत की बदौलत मुर्तदीन का किला फ़मा कर सकता। ये सब सिफात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में पाई जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर जब सहाबा मारे गम के दीवाने हो चुके थे और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा शख्स तलवार खींचे ये कह रहा था कि जो शख्स ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं, मैं तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही की शख्सियत थी कि जिसने मुसलमानों को संभाला संभाला दिया, और जब सारा अरब इर्तदाद की भड़कती हुई आग में जल रहा था, आपने मुर्तदीन के मुकाबले में जो मुदब्बिराना कार्रवाई का फैसला फरमाया और जिस बेनज़ीर लियाकत के साथ मुल्क को इस तबाहकुन फितने से निजात दिलाई, उसने रोज़े रोशन की तरह साबित कर दिया कि उस वक्त सिर्फ आप ही की जाते वाला सिफात खिलाफत के बारे गिरा को उठाने और इसे संभालने के काबिल थी। ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का अलमनाक हादसा और ना ही कबाइल अरब की रोज़ अफजू बगावत की परेशान कुन खबरें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मजबूत अज़्म व इरादे और ईमान को मुतजलजल कर सकें। फितनों और तशवीशनाक वाक़यात के दौरान आपने उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर को, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्जुल मौत में शाम की जानिब रूमियों के मुकाबले को भेजा था और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से अभी मदीने ही में रुका हुआ था, रवाना होने का हुक्म दिया। इस मौके पर बास बड़े बड़े सहाबा इकराम ने दरख्वास्त की कि इन खतरनाक हालात की मौजूदगी में उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर को फिलहाल रोक लिया जाए, और अगर लश्कर रुक नहीं सकता तो उसामा की जगह किसी बड़े आदमी को सिपहसालार मुकर्रर कर दिया जाए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस किस्म की हर दरख्वास्त को ठुकरा दिया और तमाम खतरात को नजरअंदाज करते हुए लश्कर को उसामा की क्यादत में शाम की जानिब रवाना कर दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस लश्कर की रवानगी मुसलमानों के लिए बेहद मुफीद साबित हुई। बागियों और मुर्तदीन ने यह ख्याल किया कि नाजुक सूरत हाल की मौजूदगी के बावजूद लश्कर इस्लाम को शाम की तरफ रवाना करने के ये माने हैं कि मदीने में मुसलमानों के पास जबरदस्त अस्करी कुव्वत मौजूद है, वरना कभी भी उनका लश्कर मदीने से बाहर न निकलता। इस ख्याल का असर ये हुआ कि बागियों और मुर्तदीन के हौसले पस्त हो गए और वो ये सोचने लगे कि आया इस मौके पर मदीने पर हमला करना अपनी शिकस्त मोल लेना तो ना होगा। कुछ अरसे बाद अबस और ज़ैबान के कबाइल ने मदीने पर हमला करना चाहा, लेकिन खलीफतुर रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किल्लत तादाद के बावजूद शहर के दिफा का इंतजाम मुस्तहकम कर रखा था कि हमला आवर अपने मकसद में कामयाब ना हो सके, और उन्हें बुरी तरह शिकस्त खाकर पीछे हटना पड़ा। इसी दौरान उसामा का लश्कर भी फतह याब होकर शाम से वापस मदीना पहुंच गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे कुछ आराम करने का मौका दिया। इसके बाद आपने मुतअद्दिद अलम तैयार किए, फिर बागियों और मुर्तदीन को मुती करने और उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए चारों तरफ लश्कर की रवानगी शुरू कर दी। लश्करों की रवानी से पहले आपने बागियों और मुर्तदीन के लिए एक फरमान लिखा और उसकी मुतअद्दिद नकलें करा के कासिदों के जरिए हर मुर्तद कबीले की तरफ भेजी और कासिदों को हिदायत कर दी कि कबीले में जाकर लोगों को मजमे में ये फरमान सबको सुना दिया जाए, ताकि इन पर इत्माम हुज्जत हो जाए और कबल इसके कि लश्कर इस्लाम पहुँच कर उन्हें तबाह बर्बाद कर दे, उनको अपनी इसलाह करने और राह रास्त पर आने का मौका मिल जाए। 11 अलम तैयार किए गए थे और हर अलम एक एक सरदार के सुपुर्द किया गया था। हर एक सरदार के साथ फौज का एक एक दस्ता इन सरदारों को रवानगी के वक्त एक एक फरमान एक एक ही मजमून का लिख कर दे दिया गया। तमाम सरदार ज़िलक़िस्सा से, जो नजद की जानिब मदीने से एक मंजिल के फासले पर वाक़े है, अपनी अपनी फौज को लेकर अपनी अपनी मंजिले मकसूद को रवाना हो गए। जेल में हर सरदार और उसकी मंजिले मकसूद की तफसील दर्ज की जाती है। नंबर 1, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन वलीद। आपको हुक्म दिया गया कि सबसे पहले बजाखा जाकर तलीहा बिन खुवैलद असदी से जंग करें और जब वहां से फारिग हो जाएं तो बताह जाकर मालिक बिन नुवैरा की सरकूबी करें। नंबर 2, अकरमा बिन अबू जहल। इन्हें मुस्लिमा कज़्ज़ाब की सरकूबी के लिए रवाना किया गया। नंबर 3, शुरजील बिन हसना रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हें अकरमा के पीछे उनकी मदद के लिए रवाना किया गया और हुक्म दिया गया कि जब मुस्लिमा कज़्ज़ाब से फरागत हासिल हो जाए तो वह हजर मौत जाकर बनू कंदा पर हमला करें। नंबर 4, मुहाजिर बिन अबी उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हें अस्वद रांसी की सरकोबी के लिए सना रवाना किया गया। नंबर 5, हुजैफा बिन मोहसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हें अम्मान जाकर दबा कर मगलूब करने का हुक्म दिया गया। नंबर 6, हरफजा बिन हरसमा रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हें अहले मोहरा की सरकोबी के लिए भेजा गया। हुजैफा और अरफजा को ये हुक्म भी दिया गया कि दोनों साथ साथ रहें। जब अम्मान में रहें तो हुजैफा अमीर होंगे और अरफजा उनके मातहत, और जब मोहरा में होंगे तो अरफजा अमीर होंगे और हुजैफा मातहत। नंबर 7, सुवैद बिन मकरन रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हें यमन जाकर अहले तहामा से जंग करने का हुक्म दिया गया। नंबर 8, आला बिन हजरमी रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हें बहरेन भेजा गया। नंबर 2, तरीफा बिन हाजिज रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हें बनू सुलेम और उनके शरीक हाल हवाजन से जंग करने के लिए रवाना किया। नंबर 10, उमरु बिन उल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हें कजा की सरकूबी के लिए भेजा गया। नंबर 11, खालिद बिन सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हें मुल्क शाम की सरहद पर कबाइल को मुती करने के लिए भेजा गया। सरदारों की इस फहरिस्त पर एक नज़र डालने से ये मालूम हो जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनमें से किसी को भी एक से ज्यादा कबाइल की सरकूबी का काम सुपुर्द नहीं किया। इसके बरक्स बास कबाइल की तरफ दूसरे सरदार भेजे गए। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे शख्स हैं जिन्हें दो कबाइल की सरकूबी का हुक्म दिया गया था। इन्हें पहले बजाखा जाकर तलीहा बिन खुवैलद से लड़ने का और वहां से फरागत पाने के बाद बताह जाकर मालिक बिन नुवैरा की सरकूबी का हुक्म दिया गया। इसी पर बस नहीं, बल्कि जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों कबाइल की मुहिम से फारिग हो चुके तो आपको मुस्लिमा कज़ाब के मुकाबले के लिए रवाना किया गया। इससे मालूम होता है कि खलीफतुर रसूल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कितना भरोसा और कितना एतमाद था। मुर्तदीन के मुकाबले में खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कामयाबियां हासिल की उनसे ये बात पाया सबूत को पहुंच जाती है कि आप वाकई सैफुल्लाह के खिताब के मुस्तहिक थे। हम इस जगह दूसरे सरदार इन असाकिर के कारनामे बयान नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस वक्त हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारनामों से मुतालिक कुछ कहना है। सबसे पहले हम तलीहा के साथ जंग का हाल बयान करते हैं। तलीहा अल असदी, इसका नाम तलीहा बिन खुवैलद असदी था। वो बनू असद बिन खुजैमा में से था। हज्जत अलविदा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज की खबर सुनकर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में नबूवत का दावा कर दिया था। ऐसा करने से उसकी गर्ज ये थी कि उसे भी वो शान हासिल हो सके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जर्रार बिन अजूर रजी अल्लाह ताला अन्हु को तलीहा की सरकूबी के लिए बनू असद की जानिब रवाना फरमाया। उन्होंने जाकर इस फितने का मुकाबला किया और इसे बहुत हद तक दबा दिया। इसी दौरान उन्होंने मौका पाकर तलीहा पर तलवार का वार किया लेकिन निशाने पर न लगा और वो बच गया। लोगों में ये मशहूर हो गया कि तलीहा के जिस्म पर हथियार असर नहीं करते। इस खबर से तलीहा का जोर फिर बढ़ना शुरू हो गया। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर पहुंच गई और हजरत जर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु मुहिम को नातमाम छोड़कर मदीना वापस आ गए। उनके वापस आने के बाद तलीहा का जोर बहुत बढ़ गया। उसने दावा किया कि जिब्रील उसके पास वही लेकर आते हैं। उसने अपने पैरोकारों को हुक्म दिया कि वो खड़े होकर अल्लाह ताला की इबादत करें और सजदा ना करें। अरबी असबियत ने इसके कारोबार को जबरदस्त तरक्की दी और असद, गतफान, तई, अब्ज, जेबान के कबाइल उसके साथ हो गए। इन कबाइल में से बाज आपस में हलीफ थे और बाज की एक दूसरे से रिश्तेदारियां थी, इसलिए उन्होंने मुत्तफिक होकर तलीहा की फरमाबरदारी अख्तियार कर ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी तआला ने खालिद बिन वलीद रज़ी तआला को हुक्म दिया कि सबसे पहले अकनाफ जाकर वो कबीला बनू तई की सरकोबी करें, उसके बाद बजाखा जाएं और वहां से बता एक जगह से फारिग होकर दूसरी जगह का कष्ट करने से पहले उन्हें तमाम वाकयात से मुत्तला कर दें। हजरत खालिद रज़ी तआला की रवानगी से पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी तआला ने कबीला तय के एक मोअज़्ज़ज़ शख्स अदी बिन हातिम को, जो बदस्तूर इस्लाम पर कायम थे, उनके कबीले में भेजा और फरमाया कि अपने कबीले में जाकर उन्हें इस्लाम की तलकीन करो, कहीं ऐसा ना हो कि खालिद रज़ी तआला उन्हें नीस्त तो नाबूद कर दें। चुनाचा अदी बिन हातिम रज़ी तआला तेजी से कबीला तई की जानिब रवाना हो गए। सबसे पहले वो अपने खानदान औस के पास पहुंचे, जो बनू तई की एक शाख थी, और लोगों को पेश आमद खतरात से खबरदार करना शुरू किया। उन लोगों की समझ में ये बात आ गई और उन्होंने अदी से कहा कि खालिद के यहाँ पहुंचने पर 3 दिन के लिए उन्हें रोक रखें, ताकि हम अपने कबीले के उन लोगों को जो बजाखा में तलीहा के लश्कर में शामिल हैं उसके लश्कर से अलहदा कर लें, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ और हमने पहले ही इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर लिया तो तलीहा हमारे आदमियों को या तो मरवा डालेगा या फिर कैद कर लेगा। चुनाचा अदी ने ऐसा ही किया। जब हजरत खालिद रज़ी तआला अन्हु मक्का में सुख पर पहुंचे तो अदी उनके पास गए और उनसे दरख्वास्त की कि आप 3 दिन तक इंतजार करें, इस अरसे में आपके पास 500 हथियारबंद आदमी जमा होकर आ जाएंगे, जिनके साथ आप दुश्मन पर भरपूर हमला कर सकेंगे। 3 दिन का ये इंतजार इससे बेहतर है कि आप उन्हें अपने हाथ से आग में डाल दें और फिर उनका तमाशा देखें। हजरत खालिद रज़ी तआला अन्हु ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली। इस अरसे में खानदान औस के जो आदमी तलीहा के लश्कर में थे वो वापस आ गए और इस्लाम कबूल करके हजरत खालिद रज़ी तआला अन्हु के लश्कर में शामिल हो गए। इस तरह आपकी जमीयत में मोहतद बा इजाफा हो गया। अब कबीला तय की दूसरी शाख जदेला की तरफ जाने का कस्द किया, जो मकाम अंसर पर आबाद थी। अदी ने आपसे कहा, कबीला तई एक परिंदे की मानिंद है और जुदेला तई का एक पर है। आप मुझे चंद रोज की मोहलत दें ताकि मैं जुदेला को जाकर समझाऊं। शायद ऐसा हो कि जिस तरह अल्लाह ताला ने औस को हिदायत दे दी, जुदेला को भी दे दे। हजरत खालिद रज़ी तआला अन्हु ने ये दरख्वास्त बेखुशी से मंजूर कर ली। अदी जुदेला के पास आए और अपनी कोशिशों से इस कबीले के लोगों को भी दोबारा इस्लाम कबूल करने पर आमादा कर लिया। इस तरह हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी तआला अन्हु की फौज में 1,000 नफूस का मजीद इजाफा हो गया। कबीला तई के इस्लाम लाने के बाद हजरत खालिद रज़ी तआला अन्हु अपनी फौज को लेकर बजाखा की जानिब रवाना हुए। करीब पहुंचकर आपने उकाशा बिन मोहसिन और साबित बिन अकरम अंसारी को दरियाफ्ते हाल के लिए लश्कर के आगे आगे रवाना किया। उन्होंने मौका पाकर तलीहा के भाई हबाल को कत्ल कर दिया। जब तलीहा को अपने भाई के कत्ल का हाल मालूम हुआ तो वो अपने एक भाई सलमा को साथ लेकर निकला और उकाशा और साबित दोनों को शहीद कर दिया। जब हजरत खालिद रज़ी तआला अन्हु अपने लश्कर के साथ इस मकाम पर पहुंचे जहां इन दोनों की लाशें पड़ी हुई थी, तो मुसलमानों ने बेख्याली में घोड़ों के समों से साबित बिन अकरम की लाश को रौंद डाला, लेकिन बाज लोगों की निगाह उकाशा बिन मोहसिन की लाश पर पड़ गई। उन्होंने अपने घोड़ों को रोका और उतर कर गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ये तो उनके अपने आदमियों की लाशें थीं। उन्हें सख्त रंज हुआ और उन्होंने कहा, अफसोस, मुसलमानों के दो सरदारों की लाशें इस तरह खाको खून में लिथड़ी हुई बेगोरों कफन मैदान में पड़ी हैं। हजरत खालिद रज़ी तआला अन्हु ने उस वक्त यही मसलहत समझी कि वो आगे बढ़ने के बजाय कबीला तय की तरफ वापस हो जाएं और वहां कयाम करके फौज को और ज्यादा मुनज्जम करें, ताकि शिकस्त का इम्कानी खतरा बाकी न रहे। वहां पहुंचकर उन्होंने बनी तय से मजीद मदद मांगी। उन्होंने कहा, बनी कैस के मुकाबले में तो हम आपको काफी इमदाद दे सकते हैं, लेकिन बनी असद से लड़ने में आप हमें माजूर जाने कि वो हमारे हलीफ हैं। ये सुनकर हजरत खालिद रज़ी तआला अन्हु ने कहा, तुम जिस कबीले से चाहो लड़ो और जिससे चाहो ना लड़ो, ये तुम्हारा इख्तियार है, लेकिन हमारा साथ दो, हम तुम्हें किसी कबीले से लड़ने पर मजबूर नहीं करेंगे। अदी बिन हातिम ने कहा, अल्लाह की कसम, खलीफ होने के बावजूद मुझे कोई चीज़ बनू असद के साथ लड़ने से बाज ना रख सकेगी, जब उन्होंने दुश्मनान इस्लाम का साथ दिया है तो वो हमारे हलीफ भी नहीं रहे। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, तुम अपने कबीले के लोगों की राय की मुखालफत ना करो, बल्कि वही करो जिसमें तुम्हारे कबीले वालों की खुशी हो। इसी कबीले से लड़ाई करो जिससे तुम्हारे कबीले वाले लड़ना चाहें। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला के इस बयान से मालूम होता है कि आप लोगों की नफ्सियात से किस दर्जा वाकिफ थे। आपको मालूम था कि अगर किसी कबीले को किसी कौम के खिलाफ जबरदस्ती लड़ने पर मजबूर किया जाए तो वो खुशी और इत्मीनान के साथ जंग न कर सकेगा और इसका नतीजा शिकस्तों की सूरत में जाहिर होगा। बनू तई में अपने लश्कर को खूब मुनज्जम करके हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु तलीहा से जंग करने के लिए बजाका रवाना हो गए। तलीहा के लश्कर में आईना बिन हसन फजारी भी अपने कबीला फजारा के 700 आदमियों के साथ शरीक था। फरीकैन के दरमियान घमसान की लड़ाई शुरू हुई। तलीहा एक तरफ चादर ओढ़े लोगों को धोखा देने के लिए वही के इंतजार में बैठा था। जब मुर्तदीन के लश्कर में जोफ के आसार नमूदार हुए तो आईना तलीहा के पास आया और उससे पूछा, आपके पास जिब्रील कोई वही लाए? तलीहा ने कहा, अभी नहीं। आईना ये सुनकर वापस चला गया और लड़ना शुरू कर दिया। जब लड़ाई ने मजीद शिद्दत इख्तियार की और मुसलमानों का दबाव मुर्तदीन पर बराबर बढ़ता चला गया तो आईना बिन हसन दोबारा तलीहा के पास आया और पूछा, अब भी जिब्रील कोई खबर लाए या नहीं? तलीहा ने वही जवाब दिया, अभी तक नहीं। आईना फिर वापस जाकर लड़ने लगा, लेकिन मुसलमानों का जोर इस हद तक बढ़ चुका था कि मुर्तदीन को अपनी शिकस्त यकीनी नजर आने लगी थी। आईना तीसरी बार दौड़ा दौड़ा तलीहा के पास आया और पूछा, अब भी कोई वही नाजिल हुई या नहीं? तलीहा ने कहा, हाँ नाजिल हुई है। आईना ने पूछा, क्या? तलीहा ने जवाब दिया, ये वही नाजिल हुई है, अनलका रुहन कराहा वहदी सन लानिसा, तेरे पास भी वैसी ही चक्की है जैसा कि मुसलमानों के पास है और तेरा जिक्र भी ऐसा है जिसे तू कभी ना भूलेगा। आईना को यह सुनकर बड़ा तैश आया और उसने तलीहा से कहा, कद आलम अल्लाहु अन्हु सयकूना हदीसन अल्तनसा, बेशक अल्लाह को मालूम था कि अनकरीब ऐसे वाकयात पेश आने वाले हैं जिन्हें तू कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। ये कहकर वो मैदान जंग में आया और चिल्ला कर कहा, ए बनी फजारा, अल्लाह जुल जलाल की कसम, तलीहा नबी नहीं बल्कि कज़ाब है, लड़ाई बंद करो और भाग चलो। चुनाचा तमाम बनू फजारा ये आवाज सुनते ही भाग खड़े हुए। बाकी लश्कर तलीहा के गिर्द जमा हो गया और पूछा, अब हम क्या करें? तलीहा ने अपने और अपनी बीवी नवार के लिए भागने का इंतजाम पहले से ही किया हुआ था। जब उसने ये सूरत हाल देखी तो वो अपनी बीवी को अपने घोड़े पर सवार करके ये कहता हुआ फरार हो गया कि जो शख्स मेरी तरह अहलो अयाल को लेकर फरार हो सके वो हो जाए। तलीहा वहां से भाग कर शाम पहुंचा और वहां जमीयत इकट्ठी करने लगा, लेकिन उसे कामयाबी हासिल ना हो सकी। बिलाखिर वो मुसलमान हो गया। हजरत उमर रजिला तालान के अहद में ईरान से जंगों के दौरान वो बड़ी बहादुरी से लड़ा और मैदान जंग में मुसलमानों की तरफ से लड़ता लड़ता मारा गया। आईना का ताकुब किया गया और उसको 30 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वजाफा में हजरत खालिद रजिला तालान को बनु असद का कोई सुराग ना मिल सका क्योंकि उन्होंने अपने कुनबों और खानदानों को पहले ही से महफूज मकामात पर भेज दिया था। बनु आमिर बिन सासा भी तलीहा के तरफदारों में थे और बजाखा से कुछ ही फासले पर आबाद थे, लेकिन वो तलीहा की तरफ से लड़ने के लिए मैदान जंग में न आए बल्कि अपनी जगह ही उसके इंतजार में रहे कि किस फरीक को गलबा नसीब होता है। जब उन्हें मालूम हुआ कि तलीहा को शिकस्त फाश हुई है तो उन्होंने बाहम तय किया कि अभी वक्त है, हम तौबा करके दोबारा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। चुनाचा उन्होंने हजरत खालिद रजिला तालान के हाथ बैत करके इस्लाम कबूल कर ली। बैत के अल्फाज ये थे, हम ये पुख्ता अहद करते हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाएंगे, नमाज बराबर पढ़ेंगे और जकात अदा करते रहेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ हम अपने बेटों और अपनी औरतों की तरफ से भी बैत करते हैं। बनु असद, बनु गतफान और उनके हामी कबाइल की जान बख्शी हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस शर्त पर की कि वो उन लोगों को हमारे हवाले कर दें जिन्होंने इर्तदाद के दिनों में इन मुसलमानों को जो इनके चुंगल में फंस गए थे कत्ल किया और जलाया था। चुनाचा वो लोग आपके सामने हाजिर किए गए। आपने कुर्रा बिन हबीरा के सिवा बाकी तमाम लोगों को जिनके हाथों से ये शदीद मजालिम वक़ूअ पज़ीर हुए थे कत्ल कर दिया। ये काम करने के बाद आईना बिन हसन और कर्रा बिन हबीरा को बेड़ियों में जकड़ कर खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफतुर रसूल अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु की खिदमत में रवाना कर दिया और साथ ही एक खत भी भेजा जिसका मजमून ये था, बनी आमिर इर्तदाद के बाद इस्लाम ले आए हैं, लेकिन मैंने उनकी जान बख्शी उस वक्त तक नहीं की जब तक उन्होंने इन लोगों को मेरे हवाले नहीं कर दिया जिन्होंने गरीब व बेकस मुसलमानों पर सख्त जुल्म ढाए थे। मैंने ऐसे तमाम लोगों को कत्ल कर दिया है। इस खत के हमरा मैं कुर्रा बिन हबीरा और इसके साथियों को रवाना कर रहा हूँ। जब आईना बिन हसन और कुर्रा बिन हबीरा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में पेश किए गए तो आपने उनकी जान बख्शी करके मुआफ फरमा दिया। इसके बाद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को ये खत लिखा, अल्लाह ताला अपने तमाम इनामात से तुम्हें बहरावर करता रहे। मेरी तुम्हें ये नसीहत है कि तुम अपने मामलात में हर वक्त अल्लाह से डरते रहा करो और हमेशा तकवा की राह पर चलो, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो तकवा इख्तियार करते और उसके बंदों पर एहसान करते हैं। अल्लाह ताला के रास्ते में खूब बढ़ चढ़ कर काम करते रहो और कभी सुस्ती ना बरतो। हर उस शख्स को जिसने मुसलमानों को कत्ल किया हो काबू पाने के बाद कत्ल कर दो। दूसरे लोगों के मुतालिक भी जिन्होंने अल्लाह ताला से दुश्मनी और सरकशी अख्तियार करके उसके अहकाम के खिलाफ वर्जी की, अगर तुम्हारा यह ख्याल हो कि उनका कत्ल कर देना मुनासिब है तो तुम्हें ऐसा करने का इख्तियार है। हजरत खालिद रज़ी ताला ने चश्मा बजाखा पर एक माह कयाम फरमाया। यह अरसा आपने उस इलाके में अमन अमान कायम करने और जक़ात इकट्ठी करने में गुजारा। इसी दौरान आपको खबर मिली कि तलीहा के हजीमत खोरदा लश्कर के कुछ लोग कबीला बनू हजारा में जाकर उम्मे जमल सलमा बिनते मालिक बिन हुजैफा के पास जमा हो गए और उम्मे जमल अपने गिर्द जबरदस्त जमीयत इकट्ठी करके मुसलमानों के मुकाबले का इरादा रखती है। ये खबर सुनकर हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु बनू फजारा की जानिब रवाना हुए। दोनों फौजें मैदान जंग में निकली और मुकाबला शुरू हुआ। उम्मे जमल एक ऊंट पर सवार थी और अपने साथियों को लड़ने के लिए जोश दिला रही थी। उम्मे जमल ने इस बहादुरी से मुसलमानों का मुकाबला किया कि उसका नाम जरबुल मिसल बन गया। मुसलमानों ने सोचा कि जब तक उसके ऊंट को ना गिराया जाएगा जंग का जोर कम ना होगा। चुनाचा चंद जांबाज मुसलमान हिम्मत करके उस ऊंट तक पहुंच गए और उसकी कोंचे काट कर जमीन पर गिरा दिया। उम्मे जमल को भी कत्ल कर दिया गया। उसके इर्द गिर्द के 100 दूसरे ऊंटों को इसी तरह मारा गया। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो कामयाबी नसीब हुई उसके अहम असबाब मंदरजा ज़ेल हैं। नंबर 1, हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनका लश्कर एक खास अकीदे की खातिर लड़ता था। उन्हें अल्लाह ताला की मदद और उसकी ताईद पर पूरा भरोसा था और उनकी जबानें हर वक्त इस आयत का विर्द करती रहती थी, इन तंसुरुल्लाहा यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। तर्जुमा, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को मजबूत कर देगा। उनको ये कामिल यकीन था कि जो शख्स लड़ाई में मारा जाएगा उसे शहादत का रुतबा मिलेगा और जो शख्स दुश्मनों से महफूज रहेगा उसे भी अल्लाह ताला की रजा हासिल होगी। उन्हें मौत की कोई परवाह न थी और वो दिल जमाई और बेखौफी से दुश्मन का मुकाबला करते थे। उसके मुकाबले में उनका दुश्मन महज कौमी असबियत की खातिर लड़ता था। दुश्मन के हलीफ भी उसे सिर्फ असबियत की खातिर मदद देते थे। इनमें से हर शख्स को मौत का खौफ रहता था और इसी खौफ की वजह से वो इत्मीनान से जंग न कर सकता था। जाहिर है कि इसी सूरत में कामयाबी और कामरानी के हकदार मुसलमान ही थे, उनके दुश्मन और मुखालिफ नहीं। नंबर 2, दूसरा सबब मुसलमानों की कामयाबी का उकाशा और साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत थी, जिन्हें हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त हालात के लिए अपने लश्कर से आगे आगे रवाना किया था। जब मुसलमानों ने इन दोनों सरदारों की लाशें देखी तो उनके दिलों में इंतकाम के लिए जबरदस्त जोश पैदा हो गया और वो बड़ी बेजिगरी के साथ दुश्मनों से लड़े। नंबर 3, कबीला तय के लोगों का हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिल जाना भी मुसलमानों के लिए बड़ी तकवियत का बायस हुआ। इस तरह न सिर्फ मुसलमानों की जमीयत में इजाफा हुआ बल्कि मुर्तिदीन की जमीयत में भी कमी हो गई, क्योंकि उनकी फौज का एक बड़ा हिस्सा उनसे कटकर मुसलमानों से जा मिला था। नंबर 4, आईना बिन हसन का ऐन उस वक्त के जब लड़ाई पूरे जोरों शोर से जारी थी, अपने कबीले बनू फजारा को साथ लेकर मैदान जंग से भाग जाना भी मुसलमानों की फतह का बायस बना। इसके भाग जाने से बाकी लश्कर में भी बददिली फैल गई थी और इसी बददिली के बायस जल्द ही उसे शिकस्त से दोचार होना पड़ा। नंबर 5, वो खुद तलीहा सदी जो लश्कर का रूह रवा था अपनी फतह से नाउम्मीद हो गया, और जिस लश्कर का सरदार ही जंग से भागने की नीयत रखता हो उसकी शिकस्त में किसे शुबा हो सकता है। अरब में इर्तदाद की वबा इस कदर फैली कि मक्के और मदीने के बाशिंदों और ताइफ के कबीला सकीफ के सिवा हर कबीला अरब को मुतासिर किया। ये तमाम माजरा दो झूठे नबियों तलीहा बिन खुएलद और मुस्लिमा बिन हबीब और एक झूठी नबीहा सजा बिनते अल हारिस की वजह से था। तमाम मुर्तदीन मदीने के नजदीक दो इलाकों में जमा हो गए। अबरक जो मदीने के शुमाल मशरक में 70 मील दूर है और जुल कुस्सा जो मदीने से मशरक में 24 मील दूर है। इन मुर्तदीन में कबीला गितफान, हवाजन और कबीला तई शामिल थे। इनके मुकाबले के लिए हजरत अली, हजरत जुबैर बिन अल आवाम और तलहा बिन उबैदुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम 9 साख्ता अफरादों की कलील फौज लेकर निकले और मार्का आरा हुए। मालिक बिन नुवैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में बनू तमीम के एक वफद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले की मुख्तलिफ शाखों के लिए मुख्तलिफ आमिल मुकर्रर फरमाए। इन उम्रा में जबरकान बिन बदर, सफवान बिन सफवान, कैस बिन आसिम और मालिक बिन नुवैरा शामिल थे। जब इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुनी तो इनमें बाज़ बदस्तूर इस्लाम पर कायम रहे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में ज़कात भेजते रहे। बाज़ ने तरद्दुद किया लेकिन आखिरकार दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। बाज़ ने ज़कात रोक दी और जंग के लिए तैयार हो गए। मौखर जिक्र लोगों में मालिक बिन नुवैरा भी था। जब हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलीहा की सरकूबी से फारिग हो गए तो उन्होंने बताह पहुंचकर मालिक बिन नुवैरा से मुकाबला करने का इरादा किया। मालूम होता है कि मालिक भी हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के इरादे से बाखबर था, इसीलिए उसने पहले ही इससे अपनी कौम को मुंतशिर होने का हुक्म दे दिया। जब हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बताह पहुंचे तो कबीले का कोई फर्द वहां मौजूद न था। आपने नवाही इलाकों में फौजी दस्ते भेजे और उन्हें हुक्म दिया कि वो जिस शख्स से भी मिलें उसे दोबारा इस्लाम कबूल करने की दावत दें। अगर वो दावत कबूल कर ले तो ठीक, वरना उसे कत्ल कर दें। ये हुक्म आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की हिदायत के मुताबिक दिया था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का हुक्म था, जब तुम किसी बस्ती के करीब पहुंचो तो अजान दो। अगर बस्ती वाले भी जवाब में अजान देने लगें तो उनसे कोई तआरुज़ ना करो। अगर वो अजान ना दें तो उन्हें कत्ल कर दो और उनका माल और असबाब छीन लो। जो कबीला इस्लाम ले आए उससे ज़कात तलब करो, अगर दे दे तो ठीक, वरना उसे भी कत्ल कर डालो। इन दस्तों में से जो हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने रवाना किए थे, एक दस्ते को मालिक बिन नुवैरा अपने चंद अहम कबीले बनू सालबा बिन यरबू समेत मिल गया। चुनाचा वो इसके हमराहियों समेत उसे हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ले आए। मालिक बिन नुवैरा और उसके साथियों को गिरफ्तार करने वालों में इख्तलाफ था। बाज लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी से खबर इन लोगों ने अजाने नहीं दी थी, और बाज लोगों का जिनमें पेश पेश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलील कदर सहाबी हजरत अबू कतादा थे, ये दावा था कि उन्होंने इन लोगों की बस्ती से अजान की आवाज सुनी है। जब दोनों गिरोहों के दरमियान तस्फिया ना हुआ तो हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मालिक बिन नुवैरा और उसके साथियों को कैद करने का हुक्म दिया। रात बड़ी सर्द थी। बास रिवायत के मुजिब हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स के जरिए लश्कर में ये मनादी करा दी, अपने कैदियों को गर्मी पहुंचाओ। किनाना की जबान में मुदाफत का लफ्ज कत्ल करने के मानों में इस्तेमाल होता था। उन्होंने इस गलत फहमी में अपने कैदियों को, जिनमें मालिक बिन नुवैरा भी शामिल था, कत्ल कर दिया। जब हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शोर गुल सुना तो वह अपने खैमे से बाहर आए, लेकिन उस वक्त तक तमाम कैदियों का काम तमाम हो चुका था। आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी काम का इरादा कर लेता है तो वो होकर ही रहता है, जिस शख्स ने मालिक बिन नुवैरा को कत्ल किया वो जर्रार बिन अजूर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये बात बड़ी नागवार गुजरी और वो लश्कर से निकल कर सीधे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पहुंचे। मालिक और उसके साथियों के कत्ल का सारा वाकया उनके गोश गुजार किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो लश्कर को छोड़कर आने की वजह से उन पर बहुत नाराज हुए और हुक्म दिया कि वो फिलफौर वापस जाकर अपने मुकर्रर करदा अमीर के तहत काम करें और उनके अहकाम की पूरी अताअत करें। चुनाचा अबू कतादा वापस चले गए और हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मिलकर काम करते रहे। जब खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना तशरीफ लाए तो वो भी उनके हमराह थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खलीफतुर रसूल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज किया कि खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मालिक बिन नुवैरा को कत्ल करके बहुत बुरा काम किया है। आप उनसे मालिक का किसास लीजिए और उन्हें माजूल कर दीजिए। पहले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो चुप रहे, लेकिन जब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बात पर इसरार शुरू किया तो आपने फरमाया, उमर, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो महज एक इश्तेहादी गलती सरसद हुई है, इसलिए अब तुम इनके मुतालिक जबान से कुछ ना निकालो। अल्लाह की तलवार को जिसे उसने काफिरों पर मुसल्लत किया हुआ है, मैं म्यान में डालने वाला कौन होता हूँ? आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी एक खत लिखकर मदीना तलब फरमाया। चुनाचा हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो वहां उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें काफी सख्त सुस्त कहा। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो इस अंदेशे के तहत कुछ ना बोल सके कि शायद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की राय भी उनके मुतालिक वही हो जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की है। जब वो हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंचे तो उन्होंने तमाम वाकया अर्ज किया और मालिक बिन नुवैरा और उसके साथियों के कत्ल के मुतालिक अपना उज्र पेश किया, जिसे खलीफतुर रसूल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कबूल फरमा लिया और बैतुल माल से मालिक का खून बहा अदा कर दिया। ताहम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की मालिक की बेवा से शादी कर लेने पर नाराजगी का इजहार फरमाया और उन्हें उसे तलाक देने का हुक्म दिया। मालिक बिन नुवैरा के वाकया कत्ल के बयान के बाद अब हमें ये देखना है कि आया मालिक हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की आमद के वक्त मुसलमान हो चुका था या बदस्तूर इर्तदाद पर कायम था, और अगर वो इस्लाम कबूल कर चुका था तो क्या हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे जानबूझकर कत्ल किया था या इसका कत्ल उनकी एक इज्तिहादी गलती थी। हकीकत यह है कि मालिक के कत्ल के मुकदमे का सही फैसला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस मामले में इस कदर इल्तबासात, शुभात और इख्तलाफात आ रहा है कि सही फैसला करना बहुत दुश्वार है। चुनाचा इब्ने इस्लाम भी हमारी तरह यही राय रखते हैं, ताहम इस सिलसिले में कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। जैसा कि हमने लिखा है, मालिक के मुसलमान होने के मामले में बहुत इश्तबाह पाया जाता है। बाज़ वाक़यात को देखा जाए तो मालूम होता है कि इसे इस्लाम से सख्त दुश्मनी थी और वो हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पहुंचने तक इर्तदाद पर कायम था। लेकिन इन वाक़यात से क़ता नज़र बाज़ दीगर वाक़यात पर गौर किया जाए तो इंसान इस सोच में पड़ जाता है कि शायद इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। जहाँ तक इस्लाम दुश्मनी वाले वाकयात का ताल्लुक है, इनमें से नहायत मशहूर वाकया ये है कि मालिक ने रह रहान वाले चश्मे के करीब ज़कात के ऊँटों पर अपने चंद हमराहियों के साथ हमला किया और इन्हें लूट लिया। हमले के वक्त वो पुकार पुकार कर अपने हमराहियों से कह रहा था कि ये ऊँट तुम्हारा माल है, तुम इन्हें लूट लो, ये परवाह ना करो कि कल क्या वक़ूअ में आएगा, यानी कल क्या होगा। अक़रा बिन हाबिस और क़ाक़ा बिन मागबद दारमी ने मालिक को इस हरकत से मना किया और कहा कि तुम्हें बिलाकर इस लूट घसूट का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए तुम इससे बाज रहो। लेकिन मालिक ने अपने कौल के मुताबिक मुतलक परवाना की कि कल क्या पेश आएगा। इस मौके पर उसने ये अशआर कहे, अल्लाह ने मुझे रहरमान की जमीन पर अपनी खास नेमत से नवाजा। इस नेमत को मैंने नंगी तलवार से इकट्ठा किया और ऐसा करने में ना मेरे हाथ कांपे और ना मेरा दिल धड़का। ए इब्ने औजा, तू बनू तमीम में देख ले, तमाम कबीले में मेरे इस कारनामे की धाक बैठी हुई है, लेकिन तू और तेरा साथी अकरा मुझ पर लानत मलामत करते हो। इन वाकयात की रोशनी में बजाहिर यही मालूम होता है कि मालिक قطن اسلام نہیں لایا تھا۔ اس ضمن میں یہ سوال بھی قابل غور ہے کہ اگر وہ اسلام لے آیا تھا تو جب اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر سنی تو آخر اس نے اپنی قوم کو منتشر ہونے کا حکم کیوں دیا، اور کیوں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زکوٰۃ پیش نہ کی؟ حالانکہ بنو تمیم کے دوسرے سردار وقیع بن مالک وغیرہ ایسا کر چکے تھے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یقیناً اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو قتل ہونے سے بچا لیتا۔ جس واقعے سے اس کے اسلام لانے پر استدلال کیا جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور مسلمانوں کی یہ شہادت ہے کہ انہوں نے گرفتاری سے قبل مالک بن نویرہ کے ساتھیوں کی جانب سے اذان کی آواز سنی تھی۔ حضرت ابو قتادہ جیسے جلیل القدر صحابی کی شہادت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً اس حالت میں کہ جب انہیں اپنی شہادت کے بجا ہونے کا اس درجہ یقین ہو کہ انہوں نے اس وجہ سے اپنے امیر کی مخالفت بھی گوارا کر لی اور عین دوران جہاد میں لشکر کو چھوڑ کر خلیفہ کے پاس شکایت کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے۔ پھر یہ امر بھی بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض ایک ضمنی اور غیر یقینی امر کی تفتیش کے لیے سپہ سالار کو میدان جنگ سے طلب فرمایا۔ حضرت عمر کا اصرار بھی تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لیا جائے اور انہیں سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا جائے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ انہیں مالک کے اسلام لانے کا یقین تھا۔ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المال سے مالک کا خون بہا ادا کرنے اور قیدیوں کے چھوڑ دینے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مالک کو حالت اسلام میں قتل کیا گیا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسے قتل کرنا اور اس کے دیگر ساتھیوں کو قید کر دینا جائز نہ تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خطرے کے پیش نظر طلب فرمایا ہو کہ کہیں فوج کے وہ لوگ جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ متفق ہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو کر مرتدین سے لڑنا چھوڑ دیں، خصوصاً اس صورت میں کہ جب فوج میں یہ خبر مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد کی شکایت لے کر مدینہ گئے ہیں، اور ان کی شکایت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذور کر دینے پر اصرار کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مناسب سمجھا کہ خالد کو طلب فرما کر اس واقعے کی تحقیقات کی جائے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عذر رات کو سننے کے بعد ان سے باس پرس نہیں کی۔ اگر خالد غلطی پر ہوتے تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرار واقعی سزا ضرور دیتے۔ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خالد کو مالک کے قصاص کے سلسلے میں کوئی سزا نہ دی۔ حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو جسے حق کے معاملے میں کسی شخص کی بھی پرواہ نہ تھی، کوئی طاقت خالد کو سزا دینے سے باز نہ رکھ سکتی تھی۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے صرف مالک بن نویرہ کا خون بہا ادا فرمایا تھا، نہ کہ دیگر مقتولین کا، جو بلا شبہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر قتل کیے گئے تھے۔ مالک کے ساتھ بنو بہان قبیلہ کے 45 آدمی اور قتل کیے گئے تھے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے کہ یہ لوگ حالت اسلام میں قتل کیے گئے ہیں تو خواہ آپ ان کے قاتلین سے قصاص نہ بھی لیتے، کم از کم ان سب کا خون بہا ضرور ادا کرتے۔ اس واقعے سے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک کا خون بہا ادا کرنا اور دیگر قیدیوں کو رہا کر دینا اس غرض سے تھا کہ مالک کے بھائی مطمئن بن نویرہ اور اس کی قوم کو ڈھارس دی جائے اور اپنے سردار کی قتل کی وجہ سے جس مصیبت میں وہ گرفتار ہو گئے تھے اس کا مداوع کیا جائے۔ ان واقعات اور احتمالات کی موجودگی میں ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا مالک کا قتل حالت اسلام میں ہوا یا حالت ارتداد میں۔ ہم اس سلسلے میں صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ مالک کا اسلام لانا ثابت نہیں ہوتا، لیکن اگر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قتل نہ کرتے تو یہ امر یقینی ہے کہ وہ بالآخر اسلام لے آتا۔ اس معاملے کے ایک اور پہلو پر بھی کچھ روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ مالک بن نویرہ کے بارے میں مختلف روایات جو اوپر بھی بیان کی جا چکی ہیں یہ ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدیوں کے بارے میں حکم دیا تھا انہیں سردی سے بچایا جائے۔ آپ نے اس موقع پر जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये थे, दाफितु उसराकुम। लेकिन इन अल्फाज से मुसलमानों में गलत फहमी पैदा हो गई और उन्होंने समझा कि खालिद रज़ी तआला अन्हु कैदियों को कत्ल करने का हुक्म दे रहे हैं, चुनाचे उन्होंने अपने कैदियों को कत्ल कर दिया। इसी जिम्मे में मुनजिमला और रिवायात के एक और रिवायत ये भी है कि हजरत उमर बिन अल आस रजी तआला अन्हु ने हजरत खालिद रजी तआला अन्हु को ये नसीहत की थी कि अगर वो मालिक बिन नुवैरा को देख पाए तो उस वक्त तक उसका पीछा ना छोड़ें जब तक उसे कत्ल ना कर दें। जहां तक पहली रिवायत का ताल्लुक है, अगर इसे सही मान लिया जाए तो हजरत खालिद रजी तआला अन्हु पर मालिक और उसके साथियों के कत्ल के बारे में किसी किस्म का इल्जाम आयद नहीं हो सकता, क्योंकि खालिद बिन वलीद रजी तआला अन्हु का हुक्म कैदियों के मुतालिक ये था कि इन्हें सर्दी से बचाया जाए। अगर लोगों को आपका हुक्म समझने में गलत फहमी हो गई थी तो इसमें हजरत खालिद रजी तआला अन्हु का क्या कसूर था? लेकिन बज़ाहिर ये रिवायत काबिल एतमाद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो खालिद रजी तआला अन्हु बड़ी आसानी से ये बात अपनी सफाई में पेश कर सकते थे। उस सूरत में दरबार खिलाफत में हजरत अबू कतादा रजी तआला अन्हु के हाजिर होने और इस वाकये के मुतालिक मुसलमानों में हैजान बरपा होने के भी कोई मानी नहीं है। रहा दूसरी रिवायत का सवाल, अगर इसे सही समझा जाए तो इस बिना पर खालिद रजी तआला अन्हु का मालिक बिन नुवैरा को कत्ल करना जायज न था, क्योंकि खालिद रजी तआला अन्हु हजरत उमर बिन अल आस रजी तआला अन्हु से अहकाम हासिल नहीं करते थे। इस रिवायत में यह इशारा भी पाया नहीं जाता कि हजरत उमर बिन अल आस रजी तआला अन्हु ने खालिद रजी तआला अन्हु बिन वलीद को जो नसीहत की वो खलीफतुर रसूल अबू बकर सिद्दीक रजी तआला अन्हु के इरशाद या उनकी राय के मुताबिक थी। हमारे ख्याल में मालिक बिन नुवैरा के कत्ल की मंदरजा ज़ेल वजूहात हैं। नंबर एक, उसके वो अशआर जिनमें उसने खुले बंदों इस्लाम से इनहराफ किया था और अपने लुटेरे साथियों को मुसलमानों की परवाह ना करने की तलकीन की है। नंबर दो, अबू बकर सिद्दीक रजी तआला अन्हु की वो हिदायत जिसमें साफ तौर पर उन लोगों से लड़ने का हुक्म है जो ज़कात देने पर आमादा ना हो। मालिक ने ज़कात देने से पसो पेश की थी, इसलिए इसका कत्ल और दर हकीकत खलीफा के अहकाम की बजा आवरी में शामिल था। नंबर तीन, तलीहा असदी की सरकूबी से फारिग होने के बाद खालिद बिन वलीद रजी तआला अन्हु के नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी तआला अन्हु का खत, जिसमें आपने लिखा था, अल्लाह ताला ने तुम्हारे सुपुर्द जो काम लगाया है उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ बजा लाओ और इसमें मुतलक सुस्ती ना करो। अगर तुम किसी ऐसे शख्स पर काबू पाओ जिसने मुसलमानों को कत्ल किया हो तो इसे बिला पसो पेश कत्ल कर दो ताकि दूसरे इससे इब्रत हासिल करें। इसके अलावा उन लोगों में से जिन्होंने अल्लाह ताला से सरकशी इख्तियार की और तुम्हारी मुखालफत पर कमर बस्ता हुए, अगर किसी शख्स के मुतालिक तुम्हारा ये ख्याल हो कि इसके कत्ल करने में मुसलमानों की बेहतरी है तो इसे कत्ल कर दो। नंबर चार, मालिक बिन नुवैरा की गिरफ्तारी के बाद जब हजरत खालिद रजी तआला अन्हु ने उससे गुफ्तगू की तो उसने नमाज पढ़ने का तो इकरार कर लिया लेकिन जक़ात देने में पसो पेश की। हजरत खालिद रजी तआला अन्हु ने उससे कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि नमाज और जक़ात इकट्ठे कबूल होती है? जब तक दूसरा रुकन अदा ना किया जाए पहला रुकन कभी कबूल नहीं होता। मालिक कहने लगा, तुम्हारे साहब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही कहते थे जो मैं कहता हूँ। हजरत खालिद रजी तआला अन्हु ने फरमाया, क्या वो तेरे साहब नहीं? अल्लाह की कसम मैंने इरादा कर लिया है कि अब तेरी गर्दन जरूर उड़ाऊंगा। इसके बाद दोनों में गुफ्तगू होने लगी। खालिद रजी तआला अन्हु ने फरमाया, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। मालिक ने फिर कहा, क्या तुम्हारे साहब ने यही हुक्म दिया है? गुफ्तगू के इस अंदाज से हजरत खालिद रजी तआला अन्हु ने ये नतीजा निकाला कि वो बदस्तूर इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से इनकारी है। मुस्तनद कुतुब तारीख में मालिक बिन नुवैरा के कत्ल की यही आखिरी वजह बयान हुई है और तमाम मौरखीन इस गुफ्तगू पर जो ऊपर जिक्र हुई है मुत्तफिक हैं। कहा जा सकता है कि ये वजूहात शक व शुबे से खाली नहीं और शुबे की बिना पर शरीयत इस्लामी ने किसी शख्स का कत्ल रवा नहीं रखा। ये वजूहात अगर चशक व शुबे से खाली तो नहीं, लेकिन ये शुबहात मामूली नहीं बल्कि इतने कवी हैं कि हजरत खालिद रजी तआला अन्हु के लिए मालिक के कत्ल का पूरा जवाब पेश करते हैं। इस जिम्न में एक जरूरी बात ये थी जो याद रखने के लायक है, अगर इन वजूहात को अलहदा अलहदा देखा जाए तो इनमें से कोई एक वजह कत्ल का जवाब नहीं ठहरती, लेकिन जब इन तमाम को बयक वक्त मलहूज खातिर रखा जाए तो हजरत खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु का फेल बिल्कुल हक बजाने ठहरता है। खलीफतुर रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़िल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो फैसला दिया वो बिल्कुल दुरुस्त था। जब हजरत उमर रज़िल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु से बात पूछ करने पर इसरार किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़िल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उमर रज़िल्लाहु ताला अन्हु, खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु से इश्तेहादी गलती सरजद हो गई है, इसलिए तुम उनके मुतालिक कुछ ना कहो। खलीफतुर रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़िल्लाहु ताला अन्हु से ये बात बिल्कुल बई थी कि आप किसी की रियायत करते हुए गलत फैसला सादे फरमा देते। जब हम ये देखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़िल्लाहु ताला अन्हु खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु से न सिर्फ खुश रहे बल्कि मुस्लिमा कज़्ज़ाब की सरकूबी की इस अहम मुहिम भी उन्हीं के सुपुर्द कर दी, तो हमारे लिए ये बावर करने में कोई शक व शुबा नहीं रहता कि खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु के उज़्र को बारगाह खिलाफत में शर्फ कबूलियत हासिल हो गया था। और ये कि उन्होंने मालिक को सिर्फ इसलिए कत्ल किया कि उनके ख्याल में वो बदस्तूर इर्तदाद पर कायम था, और ये और बात है कि उनका ख्याल दर हकीकत सही था या गलत। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक के नज़दीक खालिद का उज़्र काबिल कबूल ना होता तो आप ख्वाह उनसे क़िसास ना भी लेते, कम अज़ कम उन्हें अमारत से ज़रूर माजूर कर देते। अभी एक और मसला बाकी रहता है जिसका ताल्लुक भी मालिक के कत्ल से है, और वो है मालिक के कत्ल के बाद हजरत खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु का उसकी बीवी से शादी कर लेने का वाकया। हजरत खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ शोर व शगब की एक बड़ी वजह ये शादी भी थी। असल बात यह है कि लोगों की नजरों में इस वाकये की अहमियत इस वजह से थी कि ये फेल हजरत खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र इंसान से सरजद हुआ था। अगर यही फेल किसी छोटे और गैर मारूफ इंसान से सरजद होता तो इसकी परवाह भी ना की जाती और किसी को इस वाकये का इल्म भी ना होता। लेकिन चूंकि इसका इर्तकाब एक बड़े इंसान से हुआ, इसलिए इसे इसी तरह जाहिर किया गया गोया उजले और सफेद कपड़े पर एक बदनुमा सियाह दाग पड़ गया हो। ये वाकया शकूक व शुभात और इल्तबास से खाली नहीं, तारीख कोई कतई फैसला नहीं करती। बाज मौरखीन लिखते हैं, खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु ने मालिक की बीवी को खरीदा और फौरन ही उससे शादी कर ली, लेकिन बास का कहना है कि शादी इद्दत के मियाद गुजरने के बाद हुई। अगर हम ये मान लें कि मालिक हालत कुफ्र में कत्ल किया गया और उसके कत्ल के बाद खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी बीवी को जिसे लौंडी बना लिया गया था खरीद कर उससे शादी कर ली, तो इससे बज़ाहिर कोई काबिल एतराज बात मालूम नहीं होती। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि मालिक हालत इस्लाम में कत्ल किया गया था, तब बिलाशुबा खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु का फेल काबिल एतराज है। ताहम लड़ाई के जमाने में खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु का उससे शादी करना बहरहाल नामुनासिब था, क्योंकि अरब इस चीज को बुरा समझते थे। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़िल्लाहु ताला अन्हु ने भी खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु को इस मामले में सरजनिश की और उन्हें उसे तलाक देने का हुक्म दिया। इसीलिए हमें कतई तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु ने उसे तलाक कब दी। बहरहाल ये अमर यकीनी है कि आपने उसे तलाक जंगे जमामा के बाद दी, क्योंकि उस जंग में मुस्लिम के लश्कर के बाज लोग खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु के खेमे में घुसने में कामयाब हो गए थे, और उस वक्त आपके खेमे में उम्मे तमीम यानी मालिक की बीवी मौजूद थी। इसे मालूम होता है कि उसे इस जंग के बाद तलाक दी गई। बाज़ मौरखीन ने यह भी लिखा है कि मालिक की बीवी ही मालिक के कत्ल का सबब बनी, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती ने खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु के दिल को मोह लिया था। ये मौरखीन अपने दावे का सबूत ये पेश करते हैं कि कत्ल के वक्त मालिक ने अपनी बीवी से कहा था कि मुझे और किसी ने नहीं बल्कि तू ने कत्ल किया है। कोई मुसलमान भी जिसके दिल में अपने असलाफ की कुछ भी कद्र मंजिलत हो, खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी या किसी और सहाबी के मुतालिक ये बावर नहीं कर सकता कि उन्होंने शहवात नफसानिया के खातिर किसी शख्स को कत्ल किया हो। हजरत खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु ने भी जब मालिक की ये बात सुनी तो आपने फरमाया, तुझे तेरी बीवी ने नहीं बल्कि तेरे इर्तदाद के सबब अल्लाह ताला ने कत्ल किया है। शायद हजरत खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु का मालिक की बीवी से शादी करने का सबब ये हो कि खालिद रज़िल्लाहु ताला अन्हु इस मुसीबत और तकलीफ का मदावा करना चाहते हों जो मालिक की बीवी को अपने खाविंद के कत्ल से पहुंची थी, और इसकी तरकीब आपकी समझ में यही आई कि आप खुद इससे शादी करें ताकि इसकी खातिर ख्वाह दिलदही हो सके और उसे बहादुर और शायर मिजाज खाविंद के बदले एक ऐसा शोहर मिल जाए जो बहादुरी और शुजाअत में अपनी मिसाल आप हो और क़यादत में उसका कोई सानी ना हो। मुस्लिमा कज़्ज़ाब। दीगर कबाइल की तरह बनू हनीफा का भी एक वफद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था। उस वफद में मुस्लिमा कज़्ज़ाब भी था। मदीना पहुंचकर बाकी लोग तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में चले गए, लेकिन मुस्लिमा उनके सामान की रखवाली के लिए डेरे पर ही ठहरा रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वफद ने इस्लाम कबूल किया। आपने उन्हें कुछ माल मरहमत फरमाया। उन्होंने मुस्लिमा का भी जिक्र किया। पार्ट नंबर 5 यहाँ मुकम्मल होता है।